ओम शांति, ओम शांति। हम सभी कौन हैं और कहां बैठे हैं? आज बाबा ने बहुत सुंदर व्याख्या की है, हम सभी रूहानी यात्री हैं, यात्रा पर हैं। कहां जाना है? घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो ये याद की यात्रा बहुत ही सुखद है। क्यों सुखद है? क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारे साथ स्वयं भगवान है, जो बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में हमारे साथ है। तो हम कितने खुश नसीब है क्योंकि बाबा हमारे साथ है। सतयुग में तो बाबा साथ नहीं होंगे, लेकिन इस यात्रा में हम जो ट्रेन में बैठे हैं, आज बाबा ने ट्रेन से भेंट की है, तो ट्रेन में कई कंपार्टमेंट्स होते हैं। आजकल तो बहुत ही कंपार्टमेंट्स है, पहले तो इतने नहीं होते थे। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे होता था। आजकल थर्ड क्लास तो निकाल दिया है, लेकिन फर्स्ट एसी, फिर सेकंड एसी, फिर सेकंड एसी में भी टू टायर सेकंड एसी, थ्री टायर सेकंड एसी, और फिर सेकंड क्लास, तो और फिर जनरल डब्बे भी होते हैं। तो हम कौन से डिब्बे में बैठे हैं? कौन से डिब्बे में बैठे हैं? क्योंकि उस डिब्बे अनुसार ही हमको भविष्य पद मिलना है। हम कौन सा पद चाहते हैं? सतयुगी राजाई पद है फर्स्ट क्लास एसी, एकदम फर्स्ट क्लास एसी। फर्स्ट क्लास एसी तो बहुत कंफर्टेबल होता है ना, कई बार वो खूपी होती है, केवल दो सीटी होती है उस कोच में, उस सब कंपार्टमेंट में या उस एरिया में, कभी चार होती है, लेकिन बिल्कुल दुनिया की शोर से दूर। फिर उसके बाद फर्स्ट एसी भी हो, सेकंड एसी भी होता है, फिर भी वो शोर गुल बाहर से दूर। फिर सेकंड एसी में भी थ्री टायर, टू टायर, परंतु जो जनरल डिब्बा होता है वो तो बहुत शोर वाला होता है ना, कितना शोर होता है, बाहर की आवाज भी बहुत होती है और डिब्बे के अंदर भी बहुत आवाज होती है, और नींद भी नहीं आती है, कोई कोच बैठना ही होता है केवल। तो बाबा कहते हैं, अगर तुमको फर्स्ट एसी की सीट लेनी है तो क्या करो, कैसी सीट तुमको लेनी है, उसके लिए क्या करो, वो आज बाबा ने बताया। तो चलो हम सब यात्री बन करके यात्रा करें। आजकल भट्टियों में भी टाइटल क्या देते हैं, रिटर्न जर्नी। तो हमारी तो रिटर्न जर्नी है ही ना, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। तो इस रिटर्न जर्नी में हम कैसे जाएं, कितनी सहूलियत से जाएं, आराम से जाएं, वो हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 17/6/2026 है। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए, तब वो फर्स्ट एसी है तो महंगी होगी ना, टिकट तो महंगी है, तो सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। जो कुछ मेरा है ये सब बाबा का है, ट्रस्टी बन जाओ। तो सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। एयर कंडीशन टिकट के लिए पैसा तो खर्च करना पड़ता है ना, वो भी फर्स्ट एसी, तो फिर महंगा होता है, तो सब कुछ बाबा के हवाले, बाबा ये सब तेरा है। तो बाबा कहेंगे रखो अपने पास, लेकिन पूरा ट्रस्टी होके चलो। ट्रस्टी कौन होगा? जो पूरा श्रीमद पर चलेगा। तो सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है, क्योंकि गीत जो आज बजा है वो बड़ा अच्छा गीत है, बहुत समय बाद बजा है। बड़ा खुश नसीब है वो जिसके तू करीब है। तो जिसके करीब भगवान है वो कितना खुश नसीब है। तो प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है, क्यों? उत्तर है, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। हम उनके ही माँ बाप के सुन रहे हैं। तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। बेहद बाप से भी बेहद की प्राप्ति, बेहद टीचर से भी बेहद की प्राप्ति, बेहद सतगुरु से भी बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं है, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब कैसे हो सकते हैं वो? हम ही खुश नसीब है क्योंकि हम उनको जानते हैं। गीत है, बड़ा खुश नसीब है जिसके तू करीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है। तो सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? बेहद के बाप के सम्मुख हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड्स ब्राइडग्रूम को याद करती है। आत्माएं सब ब्राइड्स है, सजनियां हैं, और वो ब्राइडग्रूम है, साजन है। तो सजनियां सब साजन को याद तो करती है, भक्ति करती है, लेकिन क्या विडंबना है? तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड्स ब्राइडग्रूम को याद तो करते हैं, परंतु वंडर है। क्या वंडर है? कि उनको जानते ही नहीं है। मेरा वो ब्राइडग्रूम या दूल्हा या साजन या माशूक है कौन? बाबा कहते याद करते लेकिन जानते नहीं। परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को न जाने? नहीं तो याद करी कैसे सकती है? अगर साजन को जानती नहीं है तो उसको याद कैसे कर सकती है? तो भगवान तो सबका बाप ठहरा, बच्चे बाप को याद करते हैं। अगर बाप को जाने ही नहीं तो याद कैसे करें? बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। बिना पहचान याद करते हैं तो बाबा कहते हैं सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए याद करने से कोई फायदा ही नहीं निकलता। अगर फायदा होता तो ऊपर चढ़ते चढ़ती कला होती, लेकिन गिरते ही आ रहे हैं, तो इसलिए फायदा ही नहीं हुआ। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं है। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट बुद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, है ना। धर्म पिता को उस धर्म की आत्माएं याद करती है, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है? भगवान को तो जानते ही नहीं, लेकिन धर्म पिताओं को भी जो याद करते हैं, उनको याद करने से हमको क्या मिलना है? कुछ भी पता नहीं। तो धर्म पिताओं को याद करने से भी क्या मिलना है, उस धर्म की आत्माओं को पता नहीं। समझते हमको हेवन मिल जाएगा, ऐसे तो हेवन मिलता नहीं है, कुछ पता नहीं। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। जिस्मानी पढ़ाई क्यों अच्छी है? क्योंकि एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना लौकिक पढ़ाई में। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, ये और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। भगवान हमारा तीनों है, पर तीनों से क्या मिलता है कोई समझ नहीं सकते। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंचा होता है ना। पिता और टीचर से गुरु ऊंचा होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मौफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अथवा स्वर्ग का भी मालिक बनाते हैं और शांति धाम का भी मालिक बनाते हैं। तो बाप कहते, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। देखो भगवान कितना निरहंकारी बन करके क्या कहता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बच्चे मेरे से वर्षा लेंगे ना। सब कहते हैं हाँ बाबा। हाँ, क्या जवाब देते हैं हम बच्चे? हाँ बाबा, हम क्यों नहीं लेंगे। हाँ, है कोई ऐसा जो कहेगा नहीं नहीं बाबा मुझे वर्षा नहीं लेना है? नहीं, इसीलिए तो बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। तो सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, फिर बाबा कहते चलो वर्षा तो लेना है, परंतु वर्षे में क्या लेना है, कौन सा पद पाना है? अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे। चलो वर्षा तो लेना है, पर चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए, कौन सा पद चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं, स्वर्ग की सौगात ले आए हैं, उसमें कई पद हैं। बाप सौगात ले आए हैं, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को वरेंगे? ये भी प्रश्न है, किसको वरेंगे? सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे माना नारायण बनेंगे, और चंद्रवंशी सीता को वरेंगे तो श्री राम बनेंगे। तुम अपनी शक्ल तो देखो, बात तो देखा ना, सोचा ये नारद ने कि लक्ष्मी मुझे वरमाला पहनाए, लेकिन शक्ल तो बंदर की थी। तो बाबा कहते तुम अपनी शक्ल तो देखो, श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो। चलो श्री लक्ष्मी बनना है और नारायण को वरना है, पर उसके लिए लायक हो, या नारायण बनना है लक्ष्मी को वरना है उसके लिए लायक हो। श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो, बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते हैं? वर माला तो उनको ही पहनाएगी ना लक्ष्मी, जो उसके लायक हो। बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते? अब बाप बैठ समझाते हैं, हू बहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर के वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। वो है सूर्यवंशी राज्य पद, फर्स्ट क्लास एसी। फिर है सेकंड ग्रेड में चंद्रवंशी, जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सत्यु की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, पूरी राजधानी सूर्यवंशी की एयर कंडीशन। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं, अभी फर्स्ट एसी से तो ऊंचा तो कुछ है होता नहीं, तो एयर कंडीशन से ऊंचा तो कुछ होता नहीं, फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन के सूर्यवंशी राज्य लेंगे या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास के लेंगे। चंद्रवंशी में भी फर्स्ट क्लास है, वो भी राजा ही पद है, फिर सूर्यवंशी में भी राजा ही पद है, वो फर्स्ट क्लास है, इसलिए तो सूर्यवंशी राज्य लेंगे एयर कंडीशन का व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबर वार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। हाँ, दास दासी भी बनेंगे पर महलों में तो रहेंगे, फिर पीछे पीछे लास्ट में थोड़ी राजाई मिलती है, तो तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा उसमें भी टिकट रिजर्व होती है, रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबर वार दर्जे तो होते हैं ना, बाकी सुख तो वहां है ही है, चाहे किस भी दर्जे में बैठो, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में बैठो, सेकंड क्लास में बैठो, सब में सुख तो है ही है। अलग अलग कंपार्टमेंट्स तो है ना, साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की, तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं जो एयर कंडीशन टिकट ले सको, तो कौन बनते हैं तुम्हारे में साहूकार जो सब कुछ बाप को दे देते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका, वो समझो वो साहूकार बनते हैं, एयर फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में होंगे, जो सब कुछ बाप को दे देते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है ना, बाबा को सबको देना, ये भारत में क्या महिमा गाई हुई है कि परमात्मा सौदागर रत्नागर जादूगर है, पहले रत्नागर है फिर सौदागर है फिर जादूगर है, तो सौदागर रत्नागर जादूगर है, ये महिमा है उसकी, ये बाप की महिमा है न कि श्री कृष्ण की महिमा। वो जादूगर सौदागर रत्नागर नहीं है, हाँ वो तो फर्स्ट क्लास का प्रिंस है, श्री कृष्ण की ये महिमा नहीं है। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया है, सतयुग की प्रारब्ध पाई है, वो भी बाबा का बना, पूर्व जन्म में वो आत्मा भी श्री कृष्ण की बाबा की बनी, प्रारब्ध कहाँ से पाई तो होगी ना, वो प्रारब्ध है तो कहाँ से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी, पाई है सतयुग में प्रारब्ध, लेकिन बनाई तो पास्ट जन्म में होगी। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, है ना, नेहरू जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था, बाबा कहते उसने प्रारब्ध कितनी अच्छी पाई, जरूर अच्छे कर्म किए थे, राजा की तरह रहता था, वो लंबी लंबी शेरवानी पहनता था और एक गुलाब का फूल सदा उसी शेरवानी के पॉकेट में होता था, और वो शेरवानी तो भारत में नहीं धुलती थी, लंबा कोट लंबा पैर घुटनों से भी नीचे, और वो कहाँ धुलने जाती थी, पेरिस में जाती थी धुलने के लिए, उनकी शेरवानी यहाँ नहीं धोते थे, तो इसलिए राजा की तरह था वो। तो बाबा कहते नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे तो प्रधानमंत्री बन गया। बिगर ताज भारत का बादशाह था, बिगर ताज, ताज नहीं, राजाई रूप में नहीं, लेकिन प्रजा का प्रजा पर राज्य, लेकिन बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है, भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता, भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है, परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं, आधा कल्प के लिए। भारत ही नंबर वन तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार क्या हो गया है, भारत इतना ऊंचा है, हाँ स्वर्ग बनता है, नंबर वन तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। इसीलिए शिव बाबा फिर से आते हैं, निमित्त तो कोई बनते हैं ना, जो फिर से भारत को इतना ऊंचा बनाए, निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं हाँ बाबा आए हैं तो अभी कैसे ऊंचा बनाते हैं, उसके लिए बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये कोई जानते नहीं है। चलो आत्मा भी कह दे अपने आप को, लेकिन वो भगवान जिसकी मैं संतान हूँ उसको तो जानते नहीं, वंडर है ना। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए थे कोई को पता नहीं। और ये है 5000 वर्ष की बात, 5000 वर्ष पहले आए थे, अभी फिर आए हैं, 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सत्युग स्थापन करते हैं। सत्युग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधेरे में है ना। गीता का उपदेश कितने आकर के सुनते हैं, अनेक गीता पाठशालाएं हैं भारत में, और वहां जाकर के गीता का उपदेश सुनते हैं, परंतु न पढ़ाने वाले न पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। क्योंकि हर वक्त यही कहेंगे श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा, श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा, जबकि श्री कृष्ण भगवान न वो है न उसने कहा, परंतु न पढ़ाने वाले न पढ़ने वाले को समझते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो, सबसे सहज काम और सबसे मुश्किल काम, सिर्फ बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है फूल भी दिया है, शंख चक्र गदा पद्म सब विष्णु को दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़े दिया जाता है, देवताओं के ये अलंकार नहीं है, ये कितनी गुह्य गंभीर बातें, ये सब अलंकार ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन ब्राह्मण उसको गिरा देते हैं, इसीलिए देवताओं को दिया है। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं, है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे। आज ब्राह्मण है कल शूद्र बन पड़ते हैं, तो अलंकार गिर गया, तो कैसे देवे। आज ब्राह्मण है कल शूद्र बन पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार ही फिर शूद्र बन पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार बने, शूद्र कुमार से ब्रह्मा कुमार बने, फिर जाकर के शूद्र कुमार बन गए। माया देरी नहीं करती है, अगर कोई गफलत की बाप की श्रीमत पर नहीं चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है ना, किसको थप्पड़ मारो तो वो मुंह फिर जाता है ना, तो माया जैसे चमाट मार मुंह फेर देती है, दुनिया की तरफ ले जाती है। माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में भी कहते हैं ना, गुस्से में क्या कहते हैं, कहते हैं तुमको थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है, थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। बाप को भूले और माया एक सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति भी पाते हो और एक सेकंड में मुंह भी फिर जाता है, माया थप्पड़ मारती है। माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है, सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है। माया किनको पकड़ती है, माया देखती है कि कहाँ गफलत में तो नहीं है। जैसे ही गफलत में आया वो आई वो आत्मा, तो झट थप्पड़ लगा देती है। गफलत में आई आत्मा तो थप्पड़ लगा देती है तुरंत, तो देखती रहती है माया। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं, सीधा करते हैं मुंह नई दुनिया की तरफ, फिर माया थप्पड़ मार के फिर मुंह फिरा देती है। तो बाबा कहते हैं बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं, लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है ना, बस अब ये नया मकान हमारा तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे उस नए मकान में, ये पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट अथवा वैकुंठ लाया है। कहते हैं हाँ, क्या कहते हैं बाप वैकुंठ हथेली पर लाया है, तो कहते हैं बच्चे, लाडले बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं ना, लाडले बच्चे किसको कहते हैं, शरीरों को नहीं, लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्रह्मा की आंखों से बच्चों को देख रहे हैं। तो बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, ऐसे नहीं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूँ, अगर ड्रामा में नहीं होगा तो बाबा कुछ भी नहीं कर सकता है। ड्रामा में होगा तो करता है बाबा, लेकिन ड्रामा में होगा तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि ठीक कर दूंगा, अब उसका अपना हिसाब किताब है, तो हिसाब किताब तो उस आत्मा को ही चुकता करना है ना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, अगर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा तो करना होगा, इसमें थोड़ी कि बाबा आप ऑपरेशन से छुड़ा दो, तो बाबा कैसे ऑपरेशन से छुड़ाएगा, तो ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है, लेकिन बाबा की याद में है वो शक्ति है, तो वो कर्म भोग लगता नहीं है, जैसे सूली से कांटा हो गया, डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा, और वो आत्मा बाबा की याद में बिल्कुल निश्चिंत, बाबा ये शरीर आपके हवाले, आपको जो करना। और सचमुच डॉक्टर हैरान होते हैं जब ऑपरेशन करते हैं, तो बिल्कुल क्या सोचा था और था कितना मामूली, तो देखो हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं तो कर्म भोग तो सबको भोगना ही है, तुम्हारे ऊपर तो बोझ बहुत है, क्योंकि अब हम आत्माओं पर बहुत बोझ है पाप कर्मों का, क्यों, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, सबसे पुराने हो, जो बाद में आत्माएं आती है वो तो नई नई होती है, तो उनका इतना हिसाब किताब नहीं होता है, हम तो बहुत पुरानी है तो हमारा हिसाब किताब भी जास्ती है, तुम सबसे जास्ती पुरानी हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए ना, बाबा वर्षा देना, देने आया है तो लेना चाहिए ना। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, बाबा के बनेंगे जरूर, जो देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। अब ये बातें बाप बिगर कोई और समझा न सके, हाँ कितनी गुह्य बात है कि वो जो देवता थे वो शूद्र बन गए, फिर वो ही ब्राह्मण बन फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे, ये कितनी गुह्य बात बाबा कहते हैं, ये बाप बिगर कोई समझा न सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो, है ना, मीठ, इसलिए बाबा रोज रोज सब पहले पहला वाक्य यही कहते मीठे मीठे बच्चे, हाँ तो बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते हैं बच्चों को बाबा क्या कहते हैं मीठे बच्चों को, कहते हैं बच्चे तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानो वाच, शरीर से वाच करेंगे ना, बोलेंगे तो शरीर चाहिए, मुख चाहिए, तभी तो वाच करेंगे बोलेंगे। शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच कर नहीं सकती, न शरीर वाच कर सकता है न शरीर बोल सकता है, और आत्मा निकल गई तो आत्मा भी बोल नहीं सकती, उसको तो मुख चाहिए। तो शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच कर नहीं सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, सांस को ऐसे चढ़ाना है और एकदम रोक देना है। हाँ बाबा, इसके लिए बाप मना करते हैं कि ऐसे नहीं करना है। कई सन्यासी करते हैं ऐसे, प्राण चढ़ा देते हैं, सांस ही रुक जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। बाकी श्वास तो चलता है, वो तो चलता ही रहेगा, पर खुद को देह से न्यारा समझना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है, अभी आत्माओं में तो पाठ भरा हुआ है, अभी शिव बाबा की आत्मा भी जो एक्ट करती है वो भी सब पाठ भरा हुआ है। बाबा का भी पाठ भरा हुआ है, भक्ति मार्ग में वो पाठ चलता है शिव बाबा का, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर के ज्ञान देता हूँ, फिर ये पाठ भी चलता है। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का तो पता ही नहीं है, कोई ने शराब पिया ही नहीं हो तो टेस्ट का कैसे पता चलेगा, पिया ही नहीं है शराब तो शराब की टेस्ट क्या होती है उसको पता ही नहीं है। तो भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है ज्ञान का, वो तो समझते हैं भक्ति सब कुछ है। तो कोई ने शराब पिया नहीं हो तो टेस्ट का कैसे पता हो, ज्ञान भी जब लेवे तब तो पता पड़े ना कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सदगति कर सकते हैं। ज्ञान से सदगति होती है, परंतु सदगति दाता तो परमात्मा है, तो जरूर बाबा कहते ज्ञान सागर ही वो ज्ञान देंगे, तो जरूर ज्ञान सागर ही सदगति कर सकते हैं ज्ञान देकर। तो बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, सर्वोदया लीडर हूँ। सर्वोदया के दो अर्थ होते हैं, एक है सर्व का उदय, विनोबा भावे का वो था, दूसरा बाबा अर्थ बताते हैं सर्व पर दया। तो बाबा कहते हैं सर्वोदया लीडर है ना, कितने किस्म किस्म के हैं लोग भी, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला बाप है। विनोबा भावे की विशेषता थी, हाँ वर्धा में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, तो विनोबा भावे का आश्रम, उनकी समाधि भी है, तो वो उनकी विशेषता क्या थी, वो अमीरों से जमीन लेकर के गरीबों को देता था। तो सर्व का उदय हो जाए, गरीब भी जमीन लेकर के उनका भी उदय करे हो जाए। तो बाबा कहते किस्म किस्म के हैं, वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला तो बाप है। बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम तो वो करते हैं, बाकी सब है हद के रहम करने वाले। चलो जमीन अमीर से लेके गरीब को दी, चलो वो भी रहम किया, तो वो तो हद की बात है, वो जमीन थोड़ी उसको मिल गई है उस जन्म के लिए। तो बाबा कहते हैं बाकी सब है हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रदान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रदान बन जाते हैं, ये काम है ही परमात्मा का, सबको सतो प्रदान बनाना तत्वों सहित, ये परमात्मा का ही काम है। तो सर्वोदया का अर्थ भी कितना बड़ा है, एकदम सब पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है, इतनी दया कर लेते हैं सब पर जो कोई भी दुखी नहीं होगा। वहाँ नंबर वन फर्नीचर होंगे, कितने वैभव आदि मिलते हैं, दुख देने वाले जानवर मक्खी आदि भी कोई नहीं होगी, मक्खी भी नहीं होगी, है ना। यहाँ तो मक्खी बहुत सताती है ना, कई बार मक्खी भी सताती है, मच्छर भी सताते हैं, तो वहाँ तो न मक्खी न मच्छर न दुख देने वाले जानवर कुछ नहीं होंगे। वहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है, कभी तो मक्खी नहीं देखेंगे। यहाँ भी जो बड़े बड़े महल आदि घर है वहाँ पर एक मक्खी भी नहीं दिखाई देती, इतनी सफाई होती है, कभी तो मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस न सके। तो स्वर्ग में तो कोई की ताकत नहीं जो आ सके, यहाँ ही ऐसे है तो वहाँ स्वर्ग में कोई की ताकत ही नहीं जो आ सके। गंध करने वाली कोई चीज होती नहीं है, नेचुरल फूलों आदि की खुशबू होती है, वहाँ सेंट भी लगाने की जरूरत नहीं होती, नेचुरल फूलों की खुशबू होती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शुभी रस पिलाते हैं, आम के रस को शुभी रस कहते हैं। तो जाती थी ध्यान में संदेशियां, तो कहती थी बाबा ने मुझे शुभी रस पिलाए, एकदम जैसे पेट भरा हुआ शुभी रस पी करके। अब सूक्ष्म वतन में कहते शुभी रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, वहाँ तो पेड़ कहाँ से आए, आम के पेड़ कहाँ से आएंगे जो वो रस बना करके पिलाएंगे। ये सब साक्षात्कार है, कहाँ पिएंगे शुभी रस, स्वर्ग में पिएंगे, है ना। यहाँ भी पीते हैं, पिलाते हैं ना, आम रस पिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं, वो सब है साक्षात्कार। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है, वो तो लाइट की दुनिया है, बादलों की दुनिया, हजारों चंद्रमाओं को मिला के जो लाइट बनती है वो सूक्ष्म वतन में दिखाई देता है। हाँ, दादी गुलजार से पूछा था, दादी सूक्ष्म वतन कैसे दिखता है, तो दादी ने कहा देखो यहाँ एक चंद्रमा जब पूर्णमासी होती है कितनी लाइट होती है रात को, सितारे भी दिखाई नहीं देते, इतनी लाइट होती है एक चंद्रमा की। अब हजारों चंद्रमाएं हो और उनकी लाइट कैसी होगी, इतनी चमक होगी, शीतल शीतल चमक, ठंडी चमक होती है ना चंद्रमा की, तो तारिणी का ऐसी चमक होती। और सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार तो गुलजार दादी ने किया, और उसमें भी अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को देखा, पहला साक्षात्कार सूक्ष्म वतन का। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है, ये सब है साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो, हाँ कोई ऐसे कहीं जाते नहीं हो, यहाँ बैठे हुए साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है, बड़ा खुश नसीब है वो जिसके तू करीब है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए, चाहिए क्या भाई, हाथ उठाओ किसको कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हमको बाप मिला है और क्या चाहिए, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को तो याद करना चाहिए ना, इतना बाबा दे रहे हैं तो बाबा को याद करना चाहिए ना। बाप की मत मशहूर है, श्री मत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी तो सबकी है आसुरी मत। इसीलिए वो जानते ही नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था, इसलिए वो क्या कहते हैं वहाँ भी तो राक्षस थे, वहाँ भी तो दुख था, पता ही नहीं है उनको सतयुग का कि वहाँ सदैव सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, छोटेपन में वही राधे कृष्ण हैं, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं, सारे चरित्र अभी शिव बाबा के, परंतु वो श्री कृष्ण के चरित्र दिखाते थे। तो उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, अब क्या चरित्र दिखाएंगे, फर्स्ट क्लास है बस। बाकी मक्खन चोरी करेंगे, वस्त्र हरण करेंगे, ये सब थोड़ी करेंगे छोटे बच्चे। तो स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की तो कोई बात ही नहीं होती है। अच्छा हाँ अच्छा, अब एक मम्मा की बहुत गहरी मुरली है, इसके बाद बाबा की मुरली इतनी अच्छा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया, सब ने मुंह फेर लिया ना पुरानी दुनिया से, तो जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमद की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। हर परिस्थिति का सामना कब कर सकेंगे, जब स्वस्थिति बन जाएगी। और वो कैसे होगी, अव्यक्त स्थिति के अभ्यास को, अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा ही परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। और ये आदत क्या करेगी, स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति का सामना सहज कर सकेंगे तो ये आदत अदालत में जाने से बचा देगी। अदालत कौन सी, धर्मराज की अदालत, उसमें जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलमिटीज हो। जब इस अभ्यास को नेचुरल बनाओ, नेचर बनाओ, तो नेचुरल कैलमिटीज हो, प्राकृतिक आपदाएं हो। क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब तो पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। करावनहार बाबा है, मैं करनहार हूँ। स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती, है ना। कई कहते हैं मैं तो थक गया क्योंकि मैं कर रहा हूँ, अब मैं तो कर रहा हूँ परंतु निमित्त मात्र, कराने वाला बाबा है तो थकावट नहीं होगी। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य लोक, देव लोक और भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। भूत प्रेतों की दुनिया, किसी ने मम्मा से पूछा ये भूत प्रेत क्या है, तो मम्मा ने इसका विस्तार किया है। तो मनुष्य लोक, देव लोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, ये जो अशुद्ध जीव आत्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, भूत, हाँ उनको भूत कहते हैं, घोस्ट कहते हैं, छाया उनकी दिखाई देती है, ये जो अशुद्ध जीव आत्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है या कल्पना है? कईयों का ये प्रश्न होता है, ये सच्चे सच है या कल्पना है अथवा वहम है? ये वहम है। उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा, अब देखो मम्मा ने क्या समझाया, मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है, पाप कर्म करती है, तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है। कोई ऐसा कड़ा पाप कर्म किया तो उसको सजा भी तो कड़ी मिलेगी ना, तो सजाएं, अनेक प्रकार की सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, कोई जानवर की योनि लेकर तो नहीं भोगेंगे, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, न कि जानवर पंछी या पशु योनि में। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है। हम देखते हैं ना गाय कभी कभी कैसी स्थिति है, लेकिन उसको इतना पता नहीं चलता, मनुष्य उसको देखते तो लगता है बिचारी कैसी गाय हो गई है, कैसे भोग रही है। कुत्ते भी देखते ऐसे ऐसे उनके दो हड्डियां दिखाई देती है, लेकिन उनको क्या पता, वो तो अपने आप को तो फिर भी दौड़ते हैं। मनुष्य देख करके दया आती कि ये कैसा हो गया है। तो बाबा कहते वो जानवर जो है तो सुख दुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है, न कि जानवरों में। इस सृष्टि खेल में मुख्य पाठ मनुष्य का है, मम्मा विस्तार कर रही है, इस सृष्टि खेल में मुख्य पाठ मनुष्य का है। कई कहते हैं ना जानवरों का क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, तो बाबा कई बार कहते हैं तुमको जानवर बनना है क्या, तो उनका मत सोचो, आप सुधर जाओ तो जानवर भी अपने आप सुधर जाएंगे। तो मम्मा कहती है इस सृष्टि खेल में मुख्य पाठ मनुष्य का है। ये जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है, सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं, बाकी ये 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है, ये वैरायटी योनियां है, वो 84 लाख योनियां हो सकती है। अब ये सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकते हैं। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व, फिर ये भी प्रश्न करते हैं वो जानवरों का निवास स्थान क्या, वो भी तो आत्मा ही है ना। तो बाबा ने एक बार कहा होगा वहाँ वो ब्रह्म तत्व इतना बड़ा है, एक स्थान में जानवरों का भी तो निवास स्थान होगा उनकी आत्माओं का, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है, हमको सुधरना है, हमको अपने बारे में सोचना है। तो मम्मा कहती आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया, बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में, बाकी अब देखो मम्मा क्या कहती है, बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वो इस आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती है। अंत में तो सब जाएंगे ना, ऐसे बीच में तो जानवर की आत्मा भी नहीं जा सकती है, वो इस आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती है। इनों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पाठ होता है, इसलिए प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले हम अपनी आत्मा का कल्याण कल्याण करें। कैसे करेंगे अपनी आत्मा का कल्याण? मन मना भाव होकर। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर, तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती है, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्र में आए आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है, फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले, वहाँ भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। जो पाप कर्म किया उसका फल उस रूप में भोगती है। परंतु कोई कोई आत्मा को जल्दी शरीर नहीं मिलता, ऐसा कर्म किया है जो जल्दी शरीर नहीं मिलता, तो वो आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोष्ट बन भटकती रहती है। शरीर अभी तक मिला नहीं है तो वो जैसे भूत बन के भटकती रहती है। ये भी एक सजा है, ये भी एक सजा है, अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीव आत्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है। कई बार होता है ना, जिसमें कोई आत्मा प्रवेश हो जाती है वो अपने को ही मारती है, अपने को ही मारते हैं, ऐसे ऐसे पीटती है, सिर पीटती है, अपने आप को ही, और कोई नहीं करता। तो वो जैसे आत्मा भोगना भोग रही है उस शरीर में। तो बाबा, तो मामा कहते हैं उस अशुद्ध जीव आत्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीव आत्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती है, वो उसके अंदर ही प्रवेश है तो उसकी उसके शरीर को बहुत मारती है, बहुत कष्ट देती है। परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है, हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है, जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। अब उनका भी तो उद्धार होना है ना। हमारे ये जो दिव्यांग वर्ग भी है, जिसमें हमारे कौन है, सूर्यमणि भाई, दिव्यांगों की सेवा करते हैं। जहाँ जहाँ पर मूक बधिर या कोई मानो ब्रेन से भी कमजोर है तो उनकी भी सेवा करते हैं। कल वो सब आए थे, देखा आप लोगों ने, देखा हाँ कैसे। तो अब मुझे कहा इनका क्लास कराओ, अब मैं क्या क्लास कराऊं। तो कहा कि नहीं, जिनको दिखाई नहीं देता है वो इंटेलेक्चुअली बहुत होशियार होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, ये सिक्स सेंस उनका बहुत काम करता है लेकिन दिखाई नहीं देता। और तो वो भी थे, और दूसरे जो बिल्कुल मना इनसेन थे, जिनको मना दिमाग उनका कमजोर था, वो भी आए थे, तो उनके माँ बाप भी थे। तो मैंने कहा मैं क्या इनका क्लास कराऊं, क्या इनको ज्ञान दूं। तो कहा नहीं, आप उनको मत देखो जिनका दिमाग कमजोर है, परंतु जो नेत्रहीन है उनको देखो और उनके माता पिता को देखो, वो तो समझदार है, अब उनको देख करके ज्ञान दो। तो जैसे मैं सुना रही थी तो जो बेचारे कमजोर थे दिमाग के वो आवाज करे हूँ करते रहे। लेकिन वंडर ये हुआ, फिर कहा कि इनको योग कराओ। तो फिर जैसे इनको वो कमेंट्री से योग कराया, वो सारे जो दिमाग के कमजोर थे वो भी सब इतने शांत हो गए। हाँ, तो माँ बाप हैरान हो गए कि इतने शांत कैसे हो गए, क्योंकि माँ बाप उनको पकड़ के बैठे थे कि कहीं आवाज न करे, उठे नहीं, भागे नहीं, ऐसे भी थे। तो देखो कि ये भी तो हिसाब किताब है कर्मों का। तो बाबा कहते हैं, हाँ तो मामा कहती है, तो मामा कहती है, ये तो आपको समझाया गया है। तो जो भी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है, ये तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्र में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता है। सब आत्माओं का तो पुनर्जन्म होता है, सिर्फ परमात्मा का नहीं होता। अच्छा। यह व्यक्ति सारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। उसके लिए बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे लगते हैं। कौन है सबसे प्यारे बाबा को? जो साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है। सरलता की निशानी कैसे क्या है, कैसे पता चले ये व्यक्ति सरल है? सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल सब एक समान। ऐसे नहीं अंदर एक बार दूसरा, वो सरल स्वभाव नहीं होता। दिल, दिमाग, बोल एक समान, दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित, निरअहंकारी, निरस्वार्थी होते हैं। वे सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि वाले होते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद जो भट्टी में आए हुए भाई बहने हैं वो सब बैठे रहेंगे, और जो नीचे से पार्टी में आए हैं वे उनका नाच